इशिका और अभिमन्यु गोवा में थे। अचानक इशिका के पास केशव का कॉल आया। वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इशिका और अभिमन्यु को गोवा बुलाया था। राधिका को भी उनसे मिलना था, इसीलिए वो पहले निकल गई थी। इस बीच अभिमन्यु को पृथ्वी से पता चला कि इशिका मिस्टर केशव सिंघानिया की बेटी हो सकती है। हालांकि वो इस बात को लेकर निश्चित नहीं था, लेकिन उसका ये छोटा सा डाउट अभिमन्यु को परेशान करने के लिए काफी था। एक वक्त ऐसा था जब अभिमन्यु ने केशव की गोद ली हुई बेटी से शादी करने से मना कर दिया था। तब केशव ने गुस्से में उसे चेतावनी दी थी कि अगर गलती से भी अभिमन्यु की शादी उसकी बेटी से हुई तो वो खुद उस शादी तुड़वा देगा। केशव के अचानक उन्हें दिल्ली बुलाने पर अभिमन्यु हड़बड़ा गया था। उसे यही डर लग रहा था कि कहीं केशव को सच का पता तो नहीं चल गया कि इशिका उनकी बेटी है। इशिका सामान पैक करने के लिए गई थी। अभिमन्यु जल्दी से उसके पास आया और बोला, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर पहले ही हम इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं, मैं थक गया हूँ, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो, नहीं हम फिलहाल दिल्ली नहीं जा सकते। इशिका अभिमन्यु की तरफ पलटी और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो दोनों पिछले कुछ महीनों से साथ थे और इतने वक्त में ये पहली बार था जब अभिमन्यु ने उसे किसी काम के लिए मना किया हो। इशिका के हावभाव देखकर अभिमन्यु ने सफाई देते हुए कहा, और वैसे भी मिस्टर सिंघानिया हमारे साथ ही इंडिया आए थे, बस वो दिल्ली के लिए निकल गए और हम गोवा आ गए। उन्हें कोई बात करनी थी तो वो पहले ही कह सकते थे। अच्छा ठीक है, हमारा मिस्टर सिंघानिया से मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, हम उसे पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन रूही का क्या? हमने युविका को थोड़े टाइम के लिए रूही को रखने के लिए कहा था, और ये थोड़ा टाइम कब इतना लंबा हो गया पता ही नहीं चला। उसे ये लग रहा होगा कि हमने रूही को अडॉप्ट करने का नाम लेकर उसकी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लिया है, इशिका ने जवाब दिया। उसका कहना भी सही था, पर अभिमन्यु रूही की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग रहा था, बस उसे केशव सिंघानिया से मिलने का डर था। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचा और अपनी तरफ से बीच का रास्ता निकालते हुए कहा, बस इतनी सी बात, और तुम्हें ये क्यों लगा कि मैं रूही को वहां अकेला छोड़ दूंगा? मैंने पृथ्वी को पहले ही कह दिया था कि वो रूही को लेकर आ जाए, वो कुछ देर में पहुंचने ही वाला होगा। क्या सच में? इशिका ने मुस्कुराकर पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने स्ट्रेस में भी अभिमन्यु को रूही याद थी। और नहीं तो क्या, अभिमन्यु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और फिर इशिका को अपने करीब खींच लिया। अगले ही पल उसने इशिका को गले लगा लिया और दूसरी तरफ अपने मोबाइल से पृथ्वी को मैसेज भेजने लगा, जहां भी हो जो भी कर रहे हो आई डोंट केयर, सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी युविका चौधरी के घर से रूही को लेकर गोवा पहुंचो। इमरजेंसी फ्लाइट नहीं मिल रही है तो प्लेन रेंट पर ले लेना, लेकिन मुझे जल्द ही रूही अपने पास चाहिए, अभिमन्यु ने पृथ्वी को मैसेज लिखा। पृथ्वी भी मैसेज देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उसे अभिमन्यु ने इशिका और केशव सिंघानिया के सच के बारे में पता लगाने को कहा था, साथ ही पार्थ के बारे में भी छानबीन करनी थी। इन सब के बीच में रूही कहां से आ गई थी? खुशकिस्मती से पृथ्वी अभी दिल्ली में ही था। उसने मुंह बनाकर कहा, अजीब है, मुझे कहा था कि पहले बाकी काम करने हैं, अब बीच में रूही कहां से आ गई? चलो, इन्होंने बोला है तो करना ही होगा। पृथ्वी वहां से तुरंत रूही को लाने के लिए चौधरी मेंशन के लिए निकल गया था। वहीं अभिमन्यु इशिका के अभी तक गले लगे हुए थे। पृथ्वी का जवाब देखने के बाद उसने राहत की सांस ली। कुछ देर तक अभिमन्यु को हक करने के बाद इशिका उससे अलग होकर बोली, चलो फिर दादी के कमरे में चलते हैं और उन्हें बताते हैं। हमने अब तक उनसे भी सच को छुपा कर रखा था क्योंकि हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब और नहीं, सबसे ज्यादा एक्साइटेड वही होंगी। इतना कहकर इशिका अभिमन्यु से अलग होकर जाने को पलटी ही थी कि अभिमन्यु ने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया था। उन दोनों के नाक आपस में जुड़े हुए थे। अभिमन्यु ने धीमी हस्की वॉइस में कहा, इतनी जल्दी क्या है मुझसे दूर जाने की? अभी तक तो इस न्यूज़ को ठीक से हमने भी सेलिब्रेट नहीं किया है। वहां मर्चेंट फैमिली के बीच रहकर बात तक करने को नहीं मिलता था। मर्चेंट फैमिली का नाम आने पर इशिका के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे। अब तक वो अभिमन्यु और बाकी चीज़ों में ही उलझी हुई थी। इस बीच उसे पता नहीं चला था कि उनके जाने के बाद आखिर वहां क्या हुआ था। इशिका ने अभिमन्यु की आंखों में देखा और सीरियस अंदाज में कहा, वो लोग काफी खतरनाक थे, वो वापस तो नहीं आएंगे ना अभिमन्यु? पता चला कि हमारे निकलने के बाद वहां क्या हुआ था? इतना पता लगाने के लिए मैं ठीक से होश में नहीं था। वैसे भी मैंने पृथ्वी को एक दो काम पहले से दे रखे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद वो फिर से हमारे पीछे आएंगे, और अगर आएंगे तो हम देख लेंगे, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो दोनों अब तक इस बात से अनजान थे कि मर्चेंट फैमिली और उनका एरिया हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अभिमन्यु ने जल्दी से उसके होठों को कैप्चर कर लिया था ताकि वो उसके मूड को सही कर सके। अभिमन्यु इशिका को बहुत धीरे और सॉफ्टली किस कर रहा था। पहले इशिका का मूड ऑफ था, इस वजह से वो शांत खड़ी थी। धीरे धीरे वो भी अभिमन्यु के किस में साथ देने लगी थी। एक लंबी किस के बाद अभिमन्यु इशिका से अलग हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, चलो अब दादी से बात करने चलते हैं। वैसे इस बारे में सिर्फ दादी से ही बात करेंगे, मैं नहीं चाहता कि राजवंश फैमिली को अभी इस बारे में पता चले। हाँ, उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, उल्टा हमारे खिलाफ फिर से उल्टी सीधी प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। इशिका ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। इशिका और अभिमन्यु वहां से वसुधा के कमरे में पहुंचे। वसुधा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिस निवेदिता को तुम दोनों के पास भेजना ही वाली थी। अब मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचना तुम दोनों। मैं भले ही ठीक हो गई हूँ, लेकिन उम्र के उस पड़ाव में हूँ जब कभी भी जिंदगी और दुनिया को अलविदा कहना पड़ सकता है। अब तुम दोनों अपने अपने काम से टाइम निकालो और मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बारे में सोचो। हमेशा की तरह वसुधा उनसे फिर से एक बच्चे की डिमांड करने लगी, लेकिन इस बार बात अलग थी। पहले अभिमन्यु और इशिका उन्हें टाल देते थे या इस बारे में बात नहीं करते थे, पर आज तो वे खुद ही गुड न्यूज सुनने के लिए उनके पास आए थे। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली, वसुधा का हाथ पकड़कर सहलाते हुए कहा, ऐसे कैसे आप इस दुनिया और जिंदगी से अलविदा कह दोगी? अभी तो आपको मेरे बच्चे के लिए भी इस पूरे घर वालों से शेयर्स के लिए लड़ाई करनी है। आप जानते हैं ना, एक और कैंडिडेट उठकर आ गया है। लगता है मेरे बच्चे का कॉम्पिटिशन काफी टाइट रहने वाला है। अरे पहले तुम बच्चा पैदा तो करो, उसके आगे के कांटे हटाना मेरा काम है। चलो अब तुम दोनों तैयार हो जाओ ख्वाहिश पूरी करने के लिए, वसुधा ने हंसकर जवाब दिया। हमारी तैयारी पूरी है दादी, बस अब आपको ही खुद को और स्ट्रांग करना होगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया और फिर मुस्कुराते हुए इशिका के पेट की तरफ इशारा किया। वसुधा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर हैरानी से आंखें बड़ी करके पूछा, क्या सच में? हाँ सच में दादी, अभिमन्यु बोला। अभिमन्यु को लगा कि वसुधा प्यार से उसे गले लगा लेगी या फिर उनकी ख्वाहिश पूरी करने के बदले में न जाने कितने प्यार भरे शब्द बोलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हुआ।
वसुधा अपनी जगह से उठी और इशिका के पास आकर बोली, बहू तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम माँ बनने वाली हो और यहाँ आते ही इतना बड़ा तमाशा हो गया, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। आज से तुम राजवंश फैमिली के लोगों से दूर रहोगी, अपने खाने पीने और डाइट वगैरह का अच्छे से ध्यान रखोगी। अगर ये लड़का तुम्हें परेशान करता है तो इसे भी तुम्हारे पास आने की इजाज़त नहीं होगी। दादी मैं ठीक हूँ, आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है, इशिका ने मुस्कुराकर कहा। वसुधा ने इशिका के माथे को चूमा, फिर उसने इशिका को गले लगाया और उसे थोड़ी ही देर में हजारों दुआएं दे डाली। इशिका को ढेर सारा आशीर्वाद देने के बाद वसुधा उससे अलग हुई और निवेदिता को आवाज़ लगाते हुए कहा, मिस निवेदिता जल्दी से यहाँ आइए। निवेदिता दौड़ती हुई वहाँ पर आई तो वसुधा ने उससे कहा, ऐसा करो कि एक गायनिक को बुलाओ जो स्पेशलिस्ट हो, उसे बहू को मॉनिटर करने को कहो और बाकी सारी ज़रूरी चेकअप हो जानी चाहिए। डाइटिशियन भी बुलाओ, बहू को इस हालत में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होगी। फोटोग्राफर भी बुला लो, हर दिन को शूट करेंगे। किसी पंडित वगैरह से भी बात कर लो, बुरी नज़र नहीं लगनी चाहिए मेरी बहू पर, और आज से ये हर एक नेगेटिविटी से दूर रहेगी। तो राजवंश फैमिली के लोगों को बोल दो कि अगर उन्हें मुझसे कोई काम है तो वो डायरेक्ट मुझे वहाँ बुला ले, यहाँ मेरे विला में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना मेरी छड़ी से एक एक की कांग तोड़ दूंगी। वसुधा इशिका के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रही थी, ये देखकर उसे हंसी आने लगी। उसने फिर एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखा जो मुंह खोले उन्हें हैरानी से देख रहा था। इन सब में अभिमन्यु का तो कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। इशिका उसकी हालत समझ सकती थी, अब तक वसुधा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभिमन्यु ही था। फिर अभिमन्यु की जगह इशिका आ गई और अब तो उसका बच्चा भी आने वाला था, वो तो अब तक पैदा भी नहीं हुआ था। उसके आने भर की खबर से वसुधा ने अभिमन्यु की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ राधिका और श्रुति दिल्ली पहुंच चुकी थी, उन्होंने एक होटल में चेक इन किया था, वो दोनों आराम कर रही थीं। राधिका के चेहरे पर इस वक्त गहरी परेशानी के भाव उभरे हुए थे, कुछ ऐसी ही हालत श्रुति की थी। राधिका यहाँ जिस मकसद से आई थी वो आसान नहीं था। श्रुति राधिका के पास आकर बैठी और गंभीर आवाज़ में कहा, क्या सच में तुमने अच्छे से फैसला ले लिया है? केशव सिंघानिया को ये बताना सही रहेगा कि इशिका उसकी बेटी है? फिलहाल के लिए इतना ही, राधिका खुद जाकर केशव को सच बताने जा रही है, तो केशव का क्या रिएक्शन रहेगा? उसे तो याद तक नहीं कि राधिका और उसके बीच क्या हुआ था। चलिए अगले चैप्टर पर मिलते हैं, पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा।